उंटारी बातें आकाशवाणी बीकानेर जोधपुर उदयपुर और कोटा से एक साथ प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम जिसमें आप सुनेंगे विशेषज्ञों से ऊँटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
सगला सुन वाला ने भूम जी भाई और
गवरा बेनरा गणान गणा
राम राम सा राम राम गवरा बेन सा आ गया चौपाल माए।
राम राम भूम जी भाई, देखो चौपाल में आए बिना तुम्हारे सजे ही कोनी, पर आज चौपाल में आवन सु पहला देखो मने जूनो जमानो याद आए गयो।
अरे जूनो जमानो याद आए गयो, पर किसो याद आए गयो, किया याद आए गयो?
भूम जी भाई मने तो देखो आज याद आयो ढोला मरवण रो जमानो।
ढोला मरवण को पर कारण कई हुयो
भाई? देखो कारण जद बताऊ जद थे मारे सवाल रो उथलो देवो। सवाल पूछू?
हां हां।
के आज आपा चौपाड़ माए किनरी बाता करने बेड़ा हो यहाँ?
अरे गबरा बहन सा, आज ये इम्तहान किया लेवो हो? चौपाल माए तो कराला ऊंटारी बाता। अरे थाने तो ठाई है कि आपा ने भरोसा है ऊंट पालन व्यवसाय सु ऊंट पाल करो जीवन स्तर सुधरेला
है। नहीं भरोसो?
बिल्कुल है।
देखो ओई भरोसो हो ढोला ने। भूम जी भाई देखो आज जूनी बात मने आज याद आई के ढोला मरवण रे जमाने माए भी ढोला मरवण सु मिलन सारू इनी ऊंट माथे भरोसो करियो है। देखो सुनाओ भरोसो रो दुओ। करहा तो बेसा सड़ऊ, करहा तो बेसा सड़ऊ, मोवण साध्या काज, अंतरी जऊ वासौ हुई, मारू न मिलई आज।
वाह सा, बहुत ही फूटो दुहो सुनायो। पर गवरा बहन सा आज तो जी सुर करवा दियो, ढोला मरवण री याद दिला दी। और गवरा बहन जूने जमाने री बाता रे माए नुई बाता रो समावेश करदा और ऊंट पालका ने जानकारी दिलावा कि इन जमाने माए उष्ट पालन माए प्रोत्साहन रा कई प्रयास हो रिया है।
पर बोमजी भाई पावणा कौन पधारिया है?
अरे पावणा है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु डॉक्टर श्याम सिंह दहिया, आप वैज्ञानिक है।
तो बोमजी भाई यहाँ स्वागत करो और यहाँ राम राम कर ला।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप रो चौपाल में घनो घनो स्वागत है और आपने भी करा
राम राम सा।
बोमजी भाई और गौरव बहन और इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से भी राम राम।
राम राम सा। देखो डॉक्टर साहब, आज अगर आप बात करानी मैं तो करी जूनी पीढ़ी री बात, पर नूवी पीढ़ी री बात करानी जना शहरीकरण और बनाई गुणाई रे इन युग रे मायने देखो हर किणी ने एक दूजे ने लारे छोड़नी चाहे। आ टाबरिया जाने के ऊंट पालन व्यवसाय सु काई फायदो से के वे दूर होता जा रहे, मने कोनी लागे के वे इरे नेड़ा आवे।
गाड़ा घोड़ा ले लिया सा,
तो इनरो कारण कही है डॉक्टर साहब?
आजकल इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऊंट पालन के प्रति लोगों का रुझान नई पीढ़ी का खास तौर से और पहले भी जो लोग थे वो भी इसे छोड़ते जा रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं जिसमें कि मुख्य मैं मानता हूं कि बढ़ता हुआ मशीनीकरण, जैसे कि मुख्यतः हम अपने दिनचर्या और रोजमर्रा के कार्यों में ऊंटों का उपयोग करते आए हैं, लेकिन बढ़ते मशीनीकरण चाहे वो ट्रैक्टर हो चाहे वो आने जाने के साधन हो, इन सब के आने से इन सब के विकास से और सभी जिस तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं जितने कम समय में दूर जाना चाहते हैं तो अपने इस ऊंट को छोड़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि कृषि के कार्यों में पहले जहां पे कि अपने ऊंट को प्रयोग लाया जाता था वहीं आज ट्रैक्टर और बाकी मशीन आने से इनका प्रयोग कम हो गया है। इनका प्रयोग तो कम हुआ ही हुआ है, इसके साथ साथ जो कृषि विकास कार्यक्रम और गतिविधियां हैं उनके भी बढ़ने से जो कि कहीं ना कहीं किसी तरह से जनसंख्या के बढ़ने से या फिर बाकी किसी और वजह से हो रहे हैं, बट इनका असर क्या हो रहा है कि मशीनीकरण बढ़ रहा है, ऊंट कम हो रहे हैं और ऊंटों के लिए चरागाह कम हो रहे हैं। खेती के लिए जो जमीन है उनके बढ़ने से ऊंटों के चरागाह कम हो रहे हैं और ऊंटों के चरागाह कम होने से ऊंटों के लिए जो पोषक और जो इनके खाने की जो वनस्पति या जो पेड़ है वो कम होते जा रहे हैं और इसका सीधा असर ऊंट के रोग प्रतिरोधक क्षमता और उसके प्रजनन की क्षमता पे पड़ रहा है। इसके साथ ही आय के अन्य साधन जिनमें की फायदा ज्यादा है ऐसे बढ़ने से भी लोगों का रुझान इस तरफ कम हो गया है।
भाई देखो उतावली करनी चाहे और घणो घणो बेगो बेगो कमावनी चाहे, खटाव कोनी, खटाव नेठाव धीरज खत्म हुई गयो नी, इनरे कारण भी देखो ऊंट पालन कम होता जा रहा
है। इसमें एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ी ये मुझे और एक महत्वपूर्ण बात लगती है कि आर्थिक सहायता का अभाव वो केंद्र स्तर पे या राज्य स्तर पे हमारे ऊंट पालकों को चाहे वो बीमारियां होने वाली हो या फिर अकाल मृत्यु या इस तरह की जो एक आर्थिक सहायता भी उनको अगर उनको उपलब्ध होती है तो वो भी उनके लिए एक प्रोत्साहन कर सकती है। तो इन सब कारणों के चलते मुझे हमें लगता है कि ऊंटों के प्रति रुझान कम होता जा रहा है।
भाई मोटा मोटा कारण समझ में आया कि आज ऊंट पालन सु नवी पीढ़ी जी को है वह दूर क्यों होती जा रही है।
देखो मान खोए जो बढ़तो जा रही है और तकनीकी रूप से भी लोग विकास कर रहे
हैं। बोम जी भाई आज ऊंटा री बात मायने चार पगार ऊंट है नी, एरो महत्व तो डॉक्टर साहब समझा ही देला क्यों?
डॉक्टर साहब सगला सु पहला तो माने आ नवी पीढ़ी ने समझाओ बात के ऊंट पालन सु फायदो कई है और ऊंट पालन क्यों करे।
ऊंट पालन को अगर हम आय की दृष्टि से देखें, फायदे की दृष्टि से अगर देखते हैं, तो हमेशा से ही ऊंट हमारे राजस्थान के, हमारी मरुभूमि का एक अभिन्न अंग रहा है, यहाँ की जीवन शैली का। आर्थिक दृष्टि से देखें तो ऊंट पालकों को ऊंट को बेचने से और अपने निजी कार्यों के अलावा इससे आय और फायदा भी हो सकता है। जिसमें मैं कहना चाहूंगा कि ऊंट के उत्पाद जैसे कि दूध, ऊंट की खाल से बने हुए सामान और ऊंट के बालों से बने हुए सामान, ऐसे बहुत सारे उत्पाद हो सकते हैं जिनको बेचकर ऊंट पालक अतिरिक्त आय और मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि ऊंटनी का जो दूध है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लाभकारी है मनुष्य के लिए। बहुत सारे रोग जैसे कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप कि इसके जितने लाभ हैं तो इसकी आज बहुत मांग है। तो ऊंट पालक ऊंटनी ऊंट को अगर भार ढोने के अलावा अगर ऊंटनी के दूध का व्यवसाय के रूप में और उससे होने वाले फायदे के रूप में देखते हैं तो उससे बहुत अच्छी आय हो सकती है। इसके अलावा पर्यटन में एक बहुत अभिन्न अंग रहा है हमारे ऊंट का, और हमारे राजस्थान में समय समय पर पूरे साल ही बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिसमें कि ऊंट दौड़, ऊंट सजावट, ऊंट नृत्य, ऊंट सवारी, ये सारे कार्यक्रम होते रहे हैं हमारे यहाँ पूरे साल। हम सभी जानते हैं जनवरी में जैसे कि उष्ट्र मेला होता है, तो नागौर का मेला फरवरी में, और विश्वविख्यात पुष्कर मेला, जिसमें कि इन सभी मेलों का ऊंट एक खास विशेषता और आकर्षण का केंद्र रहता है।
बिल्कुल, तो जितना भी पर्यटक आकर्षण केंद्र ऊंट भी हुए राजस्थान वास्ते तो
जी बिल्कुल। और ऐसे में बाकी कार्यक्रमों के अलावा पर्यटकों में ऊंट बहुत लोकप्रिय है और वो उसमें खासी रुचि दिखाते हैं। तो पर्यटन के माध्यम से और ऊंटनी के दूध के माध्यम से हमारे ऊंट पालक अतिरिक्त आय और मुनाफा कमा सकते हैं।
मैं कहीं कहो कि आज तो आप को करी बैठा आठ है कि नूवी पीढ़ी ने ऊंट पालन सु जोड़ना ही जोड़ना, देखो एक नहीं खोज करन लगा नहीं जने ठा पड़े भोमजी भाई की कितना सारा फायदा हो सके, इनसु भी आमदनी हो सके। पर आई है कि चौकी तरीके उठाबरा ने समझावे नहीं, देखो टाबर तो टाबर वे
बिल्कुल
मैंने यहाँ घणो अनुभव तो वे को नहीं। पर डॉक्टर साहब देखो अगर आप बताया कि इनसु आय भी गणी वे, फायदा भी है, कमाई भी हो सके है, पर उष्ट पालक जी को है जो को ऊंट पाले है और सरकारी योजना में भी गणी बने हैं सरकार रे मायने, तो इन दया ने किया जोड़े कि अपन जो को ऊंट पालक है भी नहीं इन सरकारी योजना वो ध्यान हुए किन तरह भी फायदा उठावे, तो इनरी कोई थोड़ी और जानकारी दो
भाई ऊंट पालक जुड़े भी योजनाओं से।
एक तरफा बात हो जाएगी यदि सरकारी तौर पर ही योजनाएं बने, नीति बने, और बजाय इसके कि सही में सही मायनों में वर्तमान स्थिति में ऊंट पालक किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं, या फिर उनके पास भी हमें योजनाएं बनाते समय और उन्हें लागू करने के लिए यदि कोई बहुत अच्छा सकारात्मक लाभकारी अगर कोई विचार या कोई उनकी राय हो सकती है, तो इन दोनों को मेरे ख्याल से मिला के बनाना चाहिए। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो ऊंट पालक हैं उनसे सलाह मशवरा करके उनकी राय, उनकी समस्याओं को ध्यान में रख के राज्य स्तर पे या फिर केंद्रीय स्तर पे एक वार्षिक कार्यक्रम बना हो जिसमें कि समय समय पर उन्हें रोग से संबंधित, बीमारियों से संबंधित, उनसे बचाव, जो हमारे बीमार जानवर हैं उनको हमारे स्वस्थ ऊँटों में बीमारियां ना फैलें, इसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए, ऐसी बातों के लिए, तो अगर हम उन्हें इसमें जोड़कर अपनी योजनाएं बनाएंगे तो वो ज्यादा लाभकारी होंगी। हमें ऐसी गोष्ठियां, ऐसे सम्मेलन जिसमें कि हमारे ऊंट पालक बहुत महत्वपूर्ण हैं, कृषि वैज्ञानिक, राज्य स्तर के पशुपालन विभाग के अधिकारी, राज्य स्तर के विश्वविद्यालय, पशु विश्वविद्यालय के जो अधिकारी विशेषज्ञ हैं वो, और ऊंट उत्पादों से जुड़े हुए जो हितकारी हैं, जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इन सभी लोगों को ऐसी गोष्ठियों में सम्मिलित करके उनकी राय जानकर और उनके, मैं कहना चाहूंगा कि इसके कुछ फायदे और हो सकते हैं इस तरह से कि हमारे जो ऊंट पालक हैं या ये जो लोग हम मैंने अभी कहा कि अगर ये वहां होते हैं तो इनकी सही मायनों में जो समस्याएं हैं, जो इनकी दिक्कतें हैं और इनकी तरफ से अगर कोई सुझाव है वो ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो ऊंट पालक हैं जिन्होंने अपने सालों की कितनी पीढ़ियों से अपने पूर्वजों से जो ज्ञान अर्जित किया है पशुपालन से संबंधित बातों को, उनके रखरखाव के लिए ऐसी बातों को जो उन्होंने अपने ऊंट पालन के लिए ढाला हुआ है ऐसी बातें वो साझा कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं कहूं तो एक पारंपरिक जो उन्होंने अपने अनुभव से अर्जित किया है और ये जो अधिकारी हैं और जो जानकार हैं ये अपने वैज्ञानिक और योजनाबद्ध तरीके ऊंट उत्पादन से जुड़े हुए, व्यवसाय से जुड़े हुए, उनसे बाजार से जुड़े हुए हितकारी लोग, ये सभी मिलके जब इस मिश्रण से अगर कोई कार्यक्रम बनेगा तो मुझे लगता है कि उसको योजनाबद्ध तरीके से लागू करने में बहुत मदद मिलेगी और वो लाभकारी और सुचारू रूप से सही तरीके से फायदा कर पाएंगे हमारे किसान पालकों को।
देखो गौरव, एक बात बताऊं आपने, ये धरती पर बड़ी से बड़ी कितनी बड़ी समस्या हो, अगर बैठ पर बात करना तो मेरा समाधान जरूर निकले, और चाहे कोई बात आगे भी पहुंचानी है तो मैं मन बैठ बात करिए ही पार पड़े। आई बार डॉक्टर साहब अपने समझाई
भाई, देखो ये समझाई नहीं है ना, समझते समझते मन तो भरोसा हो गयो के डॉक्टर साहब है ज्ञान रो खजानो, और आज तो आप नवी पीढ़ी ने ऊंट पालन सारू प्रोत्साहित कर ही उठाठू है, पर हमें यारी बात देख कर मारी पखाल तो खुड़ खुड़ करन लाग गए, कुदन लाग गई और अब गीतड़ लो काटिए बिना तो सरे को
बिल्कुल सर। तो पशुपालक भैया आपकी सेवा में वो एक गीत है। आभार आप सुनियो घबरा बहनी पखाल सु ओ एक गीत। आज चौपाल में जानकारी देवण सर पधारिया है डॉक्टर श्याम सिंह दहिया, और आज आप बातचीत कर रहे हैं उष्ट पालन में प्रोत्साहन रा प्रयास, और आप सुन रहे हो इन बेड़ा ऊंटारी बाता कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेरे ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति।
डॉक्टर साहब देखो आप बात कर रहे हैं ऊंट पालन री, तो ऊंट पालन ने बढ़ावा देवण या प्रोत्साहन देवण रे सारू किस तरह प्रयास और किया जा सके, किन भांति ने बढ़ावा दियो जा सके?
गौरव बहन, ऊंट पालन को बढ़ावा हम बहुत सारे स्तर पे और बहुत तरीकों से दे सकते हैं, जिसके लिए मैं साझा करना चाहूंगा बताना चाहूंगा कि ऊंट पालन से जुड़े हुए सभी विषय, चाहे वो उसके चारे से जुड़े हों, चाहे उसकी बीमारियों से जुड़े हों, चाहे अनुवांशिकी से जुड़े हों, सभी विषयों पर शोध होनी चाहिए व उनके समाधान निकालने के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि ऐसा कोई भी पहलू ऊंट पालन का अछूता ना रहे जिसकी समस्याओं का निदान और उसका समाधान हमारे ऊंट पालकों को फायदा ना पहुंचा सके। जब हमने बात की कि ऊंट पालन के प्रति लोगों का रुझान कम क्यों होता जा रहा है, मैं उसी के जरिए फिर से कहना चाहूंगा कि चरागाह जो कम होते जा रहे हैं, मशीनीकरण जो होता जा रहा है, तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ऊंटों के चरागाह निर्धारित हों और ऐसे चरागाहों पर ऊंट के पोषक और उनके पोषण से जुड़े हुए पेड़ और वनस्पति रोपित की जाए, ताकि उनको सही पोषण मिल सके और उनकी रोग प्रतिरोधक और उनके क्षमता अच्छी हो और उनसे बनने वाले उत्पाद भी ऊंट पालकों को फायदा कर सके, जिनमें प्रमुख ऐसी पेड़ जैसे कि हमारी खिजड़ी हुई, फोग हुआ, सिरस हुआ और बहुत सारी वनस्पतियां जो कि ऊंट पसंद करते हैं या ऊंट की स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं, ऐसे चरागाहों की सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे ऊंट पालकों को वैज्ञानिक व योजनाबद्ध तरीके से ऊंट पालन से जुड़ी हुई बातों से अवगत करवाना चाहिए, ताकि खासतौर से आपातकालीन सूखा इस तरह की यदि कोई बात होती है तो ऊंट पालक ऊंट पालन को बनाते हुए ऊंट पालन करते हुए अपने जीवन को और ऊंट पालन के जरिए सशक्त रूप में जीवन यापन कर सकते हैं और फायदा कमा सकते हैं। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि एक महत्वपूर्ण बात है कि ऊंटों से जुड़ी हुई बीमारियां, जिसमें कि बहुत बार ऊंट पालक क्योंकि बहुत दूर दराज क्षेत्रों में होते हैं तो हो सकता है कि उन्हें वो फायदा नहीं हो पाए, तो हमें चिकित्सा शिविर, चाहे वो राजकीय अथवा केंद्रीय स्तर पर हो, हमें चिकित्सा शिविर जिसके माध्यम से ऊंटों के रोगों के प्रति तो जानकारी मिलती है, इसके अलावा सस्ती और बहुत अच्छी दवाइयां भी ऊंट पालकों तक पहुंचे तो इससे भी उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि ये जो एक दिक्कत है दूरदराज के क्षेत्रों में जहां उनके ऊंट बीमार हो जाते हैं और वो पहुंच नहीं पाते हैं पशु चिकित्सालय या पशु चिकित्सक के पास, इसके जरिए भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इसके अलावा चल चिकित्सालय आसपास के दूरदराज क्षेत्रों में, क्योंकि ऐसा हर बार संभव नहीं है कि ऊंट पालक अपने ऊंटों को लेकर हर बार चिकित्सालय में आ सके, तो ऐसी सुविधाएं हो कि हमारी जो गाड़ी है चल चिकित्सालय के रूप में सुसज्जित हो उपकरणों से, दवाइयों से, हर तरह से, और वो हम ऊंट पालक को उनके घर तक या वो जहां पर हैं अपने ऊंटों के साथ वहां तक पहुंचा सके। इसके साथ ऊंट पालकों के लिए दूर संचार की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए ताकि कभी भी कहीं से भी वो दूर संचार के माध्यम से अपनी समस्याओं को विशेषज्ञों को बता सकें और उसका समाधान पा सकें। एक बहुत जरूरी बात है कि यदि हम ऊंट पालन को सशक्त रूप में बनाए रखना चाहते हैं वर्तमान स्थिति में और भविष्य के लिए भी, तो इसके लिए जरूरी है कि उसकी प्रजनन क्षमता और उसकी अच्छी नस्ल के नर ऊंट की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया जाए, जिसके लिए कि ऊंटों की नस्लें और उनकी प्रजातियों की पहचान और उनके संरक्षण के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सभी मानेंगे इस बात को कि यदि अच्छी बीज होंगे तभी आने वाली जो ऊंटों की हमारी संख्या होगी वो अच्छी होगी, चाहे वो रोगों से प्रतिरोधक क्षमता के बारे में हो, चाहे उत्पादों के मामले में हो, हर तरह से अच्छी होगी। तो ऊंटों की प्रजातियां और उनके संरक्षण के लिए नर ऊंटों की अच्छी नस्ल की उपलब्धता, ताकि ऊंट पालक उनका उपयोग करते हुए प्रजनन में और अपने अपने आप को और ऊंटों को फायदा पहुंचा सके। इसके साथ ही एक जो आर्थिक हमने आर्थिक सहायता का अभाव की बात की थी, ऊंट पालकों के लिए बैंकों से यदि ऋण की व्यवस्था होती है, ऐसे ऋण जो कि ऊंट पालक ऊंट पालन से जुड़ी हुई चीजें, चाहे वो ऊंटों को खरीदना हो, चाहे वो ऊंटों के रखरखाव के लिए हो, चाहे ऊंटों के चारे के लिए हो, या फिर कोई और भी बातें जो भी ऊंट पालन से जुड़ी होती हैं, उनके लिए यदि उन्हें ऋण की व्यवस्था होती है तो उन्हें इसके लिए बहुत ही अच्छी एक आर्थिक मदद मिल पाएगी और वो अपने आप को सक्षम और इसमें रुचि दिखा पाएंगे। इसके साथ ही यदि ऊंटों के बीमा अकस्मात यदि हमारे ऊंट पालकों के किसी ऊंट की किसी वयस्क या बच्चे या मादा किसी भी आयु के ऊंटों की यदि मृत्यु होती है और यदि उसको ऊंट बीमा के जरिए अगर आर्थिक रूप से उनको सहायता मिलती है, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्रयास होगा और बहुत अच्छा प्रोत्साहन होगा हमारे ऊंट पालकों के लिए इस व्यवसाय को अपनाने।
बोमजी भाई,
हाँ।
कितनी मोटी मोटी बात है, मैं तुम्हारा सांस रोककर सुनी, क्योंकि देखो ऊंट पालकर सारू कितना प्रयास हो रहा है और कई होना चाहिए। दोनों चीजें वास्ते राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर लागोड़ो है कि अपन किणी भी तरीके से ऊंट पालका ने फायदो जाओ, चाहे चिकित्सा री बात होगी, चारा गाहरी होगी, नस्ल सुधारी होगी, और यार मन में आ भी है ऊंट रो बीमो होना चाहिए, अभी ने ऋण मिल जावे बैंक का, मतलब कई होना चाहिए, कई है केवन री बात के पूरा पूरा प्रयास यार करने से हो रहा है। एक बात हम ध्यान पड़ी अठे के डॉक्टर साहब जी को है नी, वो इतो ज्ञान रो खजानो भर लाया के अपन जिको मन में आवे जिको पूछ रहा है और भी जवाब अपन ने मिल रहा है, मतलब अपने मन ने बराबर लखे है, हैं? गरु सोच रहा है कि जिको पूछ सी जिको कराला। यार यहाँ देखो मैं भी मारी पखाल गीता सु भर लाई हूँ और पूछूला डॉक्टर साहब ने मारे मन रही के वे किसो गीत सुनना चाहे वो पखाल रे मानो निकाल और बताऊं।
डॉक्टर साहब आप किसो गीत तोड़ो सुनना चाहो।
तुम आ गए हो नूर आ गए,
तुम आ गए हो नूर आ गया है, तुम आ गए चराहों से लो जा रही थी
जीने की तो से वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही है,
तुम आ गए खबर नहीं थी मगर कोई भी सिरा जहां जा मिला वहीं तुम मिलोगे, हो कहां से चले कहां के लिए ये खबर नहीं थी मगर कोई भी सिरा जहां जा मिला वहीं तुम मिलोगे, के हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी।
आभार आप सुनियो डॉक्टर श्याम सिंह दैयारी पसंदरो गीतड़ लो।
कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
इन बेड़ा आप से सुन दिया हो ऊंटारी बाता कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति। और आज आप बातचीत करिया उष्ट पालन में प्रोत्साहन रा प्रयास।
डॉक्टर साहब देखो अब आप बतायो के राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर है वो इतना प्रयास कर रहे है की ऊंट पालन रो व्यवसाय सु अपना लोग जुड़ सके है, ऊंट पालन व्यवसाय ने प्रोत्साहित किया करा। पर एज को प्रयास जितना भी हो रहा है या ना सफल बनाऊं सारू, देखो सफल बनाना भी जरूरी है, प्रयास करो लेकिन अगर वो सफल नहीं हुए तो वे कहीं काम रहा। एंड सारू आप ऊंट पालक है वाने कहीं कहनी चावला जिनसु के वे इनसु जुड़े और ए जितना भी आपरा प्रोत्साहन रा कार्यक्रम है इनसु वे फायदा उठा।
ये सारे प्रयास बिल्कुल किए जा रहे हैं ऐसे प्रोग्राम के जरिए, चाहे वो कोई गोष्ठी हो, चाहे वो हम जिस माध्यम से बात कर रहे हैं रेडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं, इसके जरिए अपनी समस्याएं रखें और इसका समाधान पाएं, और या फिर कोई शिविर लगाया जा रहा हो, चाहे कोई प्रदर्शनी लगाई जा रही हो, तो सभी ऊंट पालकों को और ऊंट पालन से जुड़े हुए सभी लोगों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा ऊंटारी बाता जो हम कर रहे हैं अपने इस आकाशवाणी के कार्यक्रम के जरिए हम उन तक पहुंच सकते हैं, एक सशक्त रूप में बन सकते हैं, ऊंट पालक हमसे जुड़ सकते हैं अपनी समस्याओं को और हमारे विशेषज्ञों के जरिए भी अपनी समाधान को पा सकते हैं। इसके अलावा समय समय पर जो प्रदर्शनियां लगती हैं उसके जरिए बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं हमारे यहाँ राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र से वार्षिक रूप में करब एक पत्रिका छपती है, हिंदी पत्रिका, हर विषयों पर मैं कहना चाहूंगा कि लेख उसमें छपते हैं, उससे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अखबार के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में जैसे हमने बात की उसमें जो प्रदर्शनियां लगती हैं उसमें जो कार्यक्रम होते हैं ऊंट से संबंधित या चिकित्सा शिविर या फिर चल चिकित्सालय के माध्यम से, इन सभी माध्यमों से और इसके अलावा जो आधुनिक माध्यम है जिसमें कि इंटरनेट की भूमिका है, उन माध्यमों से भी हम अपनी बातों को अपने ऊंट पालों तक पहुंचा सकते हैं।
और देखो बोमजी भाई ए जिको भी प्रयास करे नी बीरे हाँ। मायने सबसे मोटो जिको यारी अपील आई है कि ऊंट हाँ। पालक जिको है वो जागरूक रहे, आगे बढ़े आवे और यार कनु जितनी भी जानकारी चाहिए वो ले जावे, ऐसा हर्ष देवन ने तैयार
है और मैं भी तैयार बैठा हूँ डॉक्टर साहब ने धन्यवाद देवन सारू
यानी थे धन्यवाद देवन ने तैयार बैठा हो और मैं यानी धन्यवाद देर और थान सागे चालन ने तैयार बैठी हूँ क्योंकि कागज आयोड़ा है मोकड़ा उथड़ो लेवन ने शरद चंद्र जी मेहता साहब का।
डॉक्टर साहब आप चौपाल में पधारिया और इतनी अच्छी मैंने चौकी जानकारी दी इन सारू मैं आपने करा धन्यवाद और आपने भी करा
राम राम सा
राम राम सा
राम राम सा।
देखो गौरव बहन साहब डॉक्टर साहब कितनी अच्छी और चौकी जानकारी दी
भौमजी भाई
हाँ
हमें देखो श्याम सिंह जी दैया साहब ने तो धन्यवाद दे दियो
हाँ।
कागज मोकड़ा आयोड़ा है यहाँ उथड़ा लेना है नी
हाँ भाई कागज या तो आवड़ा है पर चालनो पड़ी
चालनो पड़ी जना उठो हूँ तो तैयार बैठी हूँ
चलो उठो उठो लो साहब ओ आई गयो उस अनुसंधान केंद्र लो लो चलो चलो मायने चलो
मायने चलो हमें तो थे कमरो ही ओळखो ही हो शरद चंद्र जी मेहता साहब
लो देखो आई गयो कमरो लो खोलो बांडो देखो समय बैठा है कागदिया में उलझोड़ा है काम रे मायने है
ए कागदिया में उलझोड़ा है आपा कागद लेर चला और कर ला राम राम
हां बिल्कुल सा डॉक्टर शरद चंद्र मेहता साहब आपने घना घना राम राम
सा राम सा
राम राम सा ए देखो मैं तो ये कागदिया लाया हाँ और यार उथड़ो आपने देवनो ऐसा
और डॉक्टर साहब देखो आप तैयार हो नहीं उथड़ा देवन ने तो पहल नो कागज हूँ बाच लू
हाँ।
देखो साहब पहल नो कागज आयो है हाँ। श्री बेहरू रेबारी गांव सावारी ढाणी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ सु पर एक ठहरो देखो दो और कागजिया है ए तीन कागजिया है नी बारी समस्या एक ही है,
एक ही है।
तो बेड़ा ही नाम बोल दू यारा और हाँ। दूजो कागज है श्री चौथा राम गांव दूसरा तहसील पिंडवाड़ा जिला सिरोही सु और तीजो कागजिया है श्री गेवर राम देवासी गांव सारंगवास तहसील देसूरी जिला पाली सु। डॉक्टर साहब देखो ये तीन गांव सु तहसील सु कागजिया आया है और यारी समस्या एक ही है कि ऊंठा रे मायने खुजली हुए पाँव घनी हुई है बहुत परेशान यार ऊंट कई करे
हाँ। जहाँ भी हम जा रहे हैं हर जगह ये समस्या आ रही है और जहाँ भी जाओ ये सवाल पूछा जा रहा है। इसके लिए मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगा कि इलाज की जहाँ तक बात है आइवरमेक्टिन एक इंजेक्शन आता है उसको हर हफ्ते लगाएं और दूसरी जो चीज है एक डेल्टा मेथ्रिन दवाई आती है वो 4 ml 1 liter पानी में घोल के पशु के ऊपर लगाएं अच्छी तरह साफ करके पहले पशु को ठंडे पानी से साफ कर लें उसके बाद इसको लगाएं। लेकिन ये तो बात हो गई इलाज की, जो लोग परेशान है वो इस बात से भी परेशान है कि ये हुए नहीं और जो स्वस्थ पशुओं में फैलती जाती जाती है उसका भी रोकथाम हो। और इसके लिए जो दो तीन चीजें है कि जैसे एक बार किसी पशु में ये आ गई तो उस पशु को अलग कर दें, नहीं तो ये दूसरे पशुओं में फैल जाएगी। दूसरा ये कि वहाँ जो मिट्टी है और भी जो आसपास की चीजें उनको भी ये साफ कर लें। तीसरा ये कि जब भी ये दवाई लगाएं, जो डेल्टा मेथ्रिन दवाई लगाएं, तो उसमें एक चीज का ध्यान रखें कि जो बीमार पशु है उस पर तो लगाएं लगाएं, लेकिन उसके जो संपर्क में जो जो पशु आ गए हैं उनके ऊपर भी अगर ये लगाते हैं डेल्टा मेथ्रिन, जिस तरह मैंने पानी में घोल के लगाने का तरीका बताया है, तो उनमें भी ये फैलेगी नहीं। तो इस तरह ये दो तीन चीजों का ये ध्यान रखे। और चौथा, जितने भी स्वस्थ पशु है उनको ये हमेशा ब्रश से उनके बाल को साफ रखें ताकि ये बीमारी उनमें नहीं होए।
और ओ देखो कागज ये है, श्री जगाराम देवासी, गांव इसरा, तहसील पिंडवाड़ा और जिला सिरोही से। आप लिखे डॉक्टर साहब की ऊंटनी और दूध क्यों बढ़ावा।
देखो साहब, बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज तो है कि अच्छे नर पशु का चयन करें। और अच्छे नर पशु का चयन ये अपने स्तर पर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ऊंटारी बाता के माध्यम से मुझसे संपर्क करें, इस कार्यक्रम में आकाशवाणी केंद्र से संपर्क करें, हम इनको अच्छी सलाह देंगे और अच्छा से अच्छा पशु इनका चयन गांव में ही करवा देंगे। दूसरी बात ये कि दूध बढ़ाने के लिए अच्छा पोषण होना जरूरी है, और पोषण के लिए ये गांव-गांव में घूमते हैं लेकिन इनको पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है, और उसके लिए जो मिनरल्स हैं उसकी कई सारी दवाइयां बाजार में आ रही है, और उन दवाइयों के मार्गदर्शन के लिए ये हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे केंद्र में संपर्क कर सकते हैं, या जो स्थानीय पशु चिकित्सक है उससे भी संपर्क कर सकते हैं, और इनका दूध सुनिश्चित मात्रा में बढ़ेगा। ये जरूर संपर्क करें हमसे, इनको हम अच्छी दवाई बताएंगे कि दूध बढ़ जाएगा।
और डॉक्टर साहब देखो आगलो कागज आयोडो है, श्री डूंगर जी रेबारी रो, ये गांव सावारी ढाणी तहसील भरेसर जिला चित्तौड़गढ़ से लिखे है। ये लिखे है कि यार ऊंटा रे पगा रे मायने सूजन आ जावे है, उन रो उपाय कई है।
देखो साहब, ऊंटा रे पगा में सूजन कई कारण से आवे, लेकिन जिस गाँव से ये चिट्ठी आई है वहाँ पथरीली जमीन है, और पूरे उदयपुर चित्तौड़ राजसमंद क्षेत्र में ये एक आम समस्या है कि कई बार तीखे पत्थर जो है ऊँटों के पैर में चुभ जाते हैं। ऊँट अपने को पता है रेगिस्तान का जानवर है, लेकिन आजकल ये उन क्षेत्रों में भी पाया जाता है, इसलिए ये उसके लिए स्थानीय पशु चिकित्सक से इलाज तो करवाएं ही करवाएं, लेकिन दो तीन चीजों का ध्यान रखें कि एक तो उस गाँव को गीला नहीं होना, दूसरा ये कि उसके ऊपर पॉलीथीन जरूर बांधे ताकि आते जाते उसमें मिट्टी और ये चीजें नहीं लगे, और तीसरा ये कि उसके ऊपर जो बैंडेज करे उसमें रुई की मात्रा अच्छी रखे ताकि उसको एकदम चोट ना पहुंचे, और जो डॉक्टर साहब हैं वो इलाज करेंगे, उसमें वो इंजेक्शन भी दें ताकि घाव जल्दी
देखो कागदिया तो हाल मोकड़ा पड़िया है, और डॉक्टर साहब पुतला देवण ने भी तैयार है, पर देखो भगत रे साथ है तो चाल नहीं पड़ेला, कागदिया बेड़ा कर रबे
चला अली को बेल ठिकाण तो बता दियूं।
ठिकाणो बताओ एक कथा की, और नुवा ऊंट पालक है वो अपन कागदिया लिखे।
लिखो सा ठिकाणो, ऊंटारी बाता कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बीकानेर।
और एक और नुवी बात ये भी ने कहिया भूलो,
तो सा अगलो जो कार्यक्रम है वो है लाखुसर गांव में ऊंटारी बात,
तो पहला सीख चला।
आथी आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ऊंटारी बाता, और हमें राम राम सा।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
बातें आकाशवाणी बीकानेर जोधपुर उदयपुर और कोटा से एक साथ एक माह के
पहले और
तीसरे शुक्रवार को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे विशेषज्ञों से ऊँटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ।